ओम शांति। एक कोई वीआईपी यहाँ भी आ जाओ, हरि भाई आप ही आ जाओ, आप बड़े आदमी आगे, भाई साहब आगे आ जाओ, दूसरे भी आ जाओ, आ जाओ। प्रभु पालना का सुख हम सभी भाग्यवान आत्माओं को मिल रहा है। कैसा लगा बाबा कल, कैसा लगा माताओं को बाबा कल? बहुत अच्छा था बाबा, बहुत हाथ उठवाए कल बाबा ने बहुत हाथ उठवाए, बहुत बार ताली बजवाई और बिना प्रोग्राम के चले गए। देखा वो भी, कोई याद कर रहा होगा भक्त बाबा को। खींच होती है ना, जब वो गीत गा रहे थे ना मधुरवाणी ग्रुप, बाबा का फेस स्क्रीन पर मैंने देखा, मुझे फील हुआ कि बाबा जाएगा जल्दी ही। बिल्कुल बाबा का वो एक्सप्रेशंस आ गए थे जाने के, जैसे यहाँ से डिटैच हो गए पूरी तरह, फीलिंग्स को डिटैच कर लेता है ना बाबा, दस्ती देते हुए भी जैसे फिर यहाँ नहीं, ऐसा फील होने लगा था। तो ये भाग्यवान आत्माओं को परमात्म पालना मिल रही है। जो सेवा में भी आती हैं बहने, लगता है ना सेवा करते हुए ये श्रेष्ठ भाग्य भी हम सबको मिलता है। सेवा का प्रैक्टिकल फल प्रभु पालना। सब गई थी माताएं नीचे, यहीं थे, सब गए थे। सेवा में कौन कौन है हाथ उठाना? अच्छा, बहुत माताएं हैं सेवा में भी। भाई सब गए थे नीचे, गए थे। अच्छा, तो पहले 5 मिनट में हम बाबा की सभी बातें रिपीट कर लेते, जिसको जो अच्छा लगा हो वो सुनाओ, बोलो। खुश रहना और खुशी बांटना, इस सीजन का ये मुख्य मंत्र था, ठीक है। और आगे बहने बताएं। अब वो दो बाबा ने संकल्प ले लिए अगले सीजन तक, पहला काम निर्विघ्न रहना, रखना सेवा स्थान को बन टोटल निर्विघ्न, और दूसरा ठहरो, पहले दूसरा नहीं 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 दूसरा व्रत लिया जब तक अगले सीजन तक। हाँ, ये सब कोई भूला हुआ है, पता नहीं क्यों। मैंने कई क्लास नीचे भी आज कराई, ग्रुप आते हैं ना, 4 कराई, सबसे जो पूछा तो ये किसी को याद नहीं था। यही रहस्य है, ये सत्य है। कोई भी आत्मा अगर सच्चे दिल से अपनी किसी कमजोरी को छोड़ना चाहे तो छूट जाएगी, क्योंकि बाबा की डायरेक्ट मदद होने लगती है। हमें केवल श्रेष्ठ संकल्प करना है और अपनी कमियों का एहसास होना चाहिए, रियलाइजेशन। जैसे एक बहुत अच्छा एक स्लोगन है, एक कहावत है, बहुत सुंदर बात है ये, कि हर मनुष्य अहंकार के बारे में तो जानता है कि अहंकार बहुत बुरा है, अहंकार विष के समान है, अहंकार बहुत बुरी चीज है, लड़ाई झगड़े अहंकार से होते हैं, परंतु क्या नहीं जानता वो, नहीं अपने अहंकार के बारे में नहीं जानता, जबकि अहंकार सबके पास है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कहीं ना कहीं चाहे 5% ही हो, अहम न हो। सुरेश भाई ठीक है बात है, मैं भी अपने को चेक करता हूँ तो समझ में आता है कि ये छोटी बात भी तो मैंपन है, उसमें भी मैं राइट हूँ। ये संकल्प बाबा ने बताया ना हरि भाई, ये संकल्प अहंकार का एक ऐसा स्वरूप है जो मनुष्य को पता नहीं चलता, वो हमेशा सोचता है मैं राइट हूँ, वो दूसरों को तंग कर रहा है तो भी सोचता है मैं ठीक कर रहा हूं, इन्हें करना ही चाहिए, होता है ना ये। तो ये दो बातें थी, हम इसके बारे में अपने को बस बांध लें कि अगली बार हम बाबा से तभी मिलेंगे, कोई भी एक कमी अपनी ध्यान में ले लें, इससे मुक्त होना है और हम हो जाएंगे हम। और चले आगे पॉइंट्स। बाबा कह रहे थे बाप को राजी करो ना, सुना है कितना प्यार था उन शब्दों में, कितना अपनापन था। बाप तो राजी है ही, पर और राजी करो ना। फील हुआ भगवान का प्यार, कैसे अपने परिवार को वो महान देखना चाहता है, कैसे हम सबको इतना महान बनाना चाहता है कि हमारे चेहरे ऐसे हो जाएं, कैसे कोई भी देखे उसके भी गम दूर हो जाएं, लो हमारे चेहरे लोगों की टेंशन नष्ट करने वाले हों। हमारे चेहरे क्या प्रसिद्ध है इसके लिए, भारत में बहुत प्रसिद्ध बात है, अभी छूट गई है। हाँ, एक तो ये है कि अगर कहीं काम बिगड़ रहा हो तो लोग कहेंगे आज सवेरे सवेरे कि इसका मुंह देख लिया। हाँ, और दूसरी बात, काम बनाने के लिए जब किसी काम पे जाते हैं तो लोग मंदिरों में देवियों या देवताओं का दर्शन करके जाते हैं, थे, अब का मुझे पता नहीं क्या हाल है। इसलिए बहुत लोगों ने अपने घरों में छोटे मंदिर, छोटे भी बनाते हैं ना सभी। मैं बहुत जगह जाता हूँ तो लोग बताते हैं हमारे समाज में घर में मंदिर बनाने की एक रिवाज ही है। तो जैसे और कुछ हम रूम बनाएंगे, भाई ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, यहाँ ये करना है, या बेडरूम है, वैसे ही एक पूजा कक्ष भी। तो देखिए ये प्रथा कहाँ से चली, कि हम अपने चेहरे को ऐसा दर्शनीय बना दें कि हमें देखकर लोगों के बिगड़े काम बन जाएं। ऐसा ना हो हमें देख के कोई कहे आज सवेरे सवेरे इनका मुंह देख लिया, गए आज तो सारा दिन बेकार हुआ आज तो हमारा। तो बहुत ध्यान देना है, बाबा हमें ऐसा देखना चाहते हैं। हम बाबा की कामनाओं को तो पूरा करेंगे ना, हम भी सोचे देखो उसका कितना प्यार कि बाप को राजी करो ना बच्चे, वो तो राजी है। पर सारा संसार हमसे ऐसा सुख पाए इसकी बहुत जरूरत है। सभी ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। पर एक बात मुझे याद आ गई, हम सभी इस सृष्टि के, इस कल्प वृक्ष के आधार मूर्त हैं, हम जड़े हैं, याद है ना सबको, हम कल्प वृक्ष की जड़े हैं। वृक्ष को भोजन और पानी कहाँ से जाता है, जड़ों के माध्यम से जाता है। और जड़े रहती कहाँ हैं, मिट्टी में, अंडरग्राउंड, गोबर में, कीचड़ में। जड़ों को कभी ये तो नहीं होता ना हम भी बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं तो दवाई बनाने वाले, जड़ी बूटी वाले जड़ों को काट लेंगे, हो जाएगा ना। हम भी जड़े हैं, हमें ये नहीं संकल्प आना चाहिए हम भी जरा बाहर आ जाएं। फल फूलों का बड़ा महत्व होता है, जड़ों को कोई पूछता ही नहीं। आम बड़े मीठे हैं, लेकिन जिन जड़ों पर आम खड़ा है उसकी कोई महिमा नहीं, महिमा का त्याग। और जड़ों के द्वारा भोजन पानी जाता है, हम याद रखें। एक चित्र बना लें, एक विजन बना लें, हमारे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष खड़ा है। और जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो हमारी स्थिति है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी पवित्रता है, जो हमारे अंदर योग की शक्तियां हैं, वो सब हमारे माध्यम से पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। हरियाली हो रही है, जैसे कोई पौधा सूखा हुआ हो पानी दे दिया जाए तो एकदम हरा भरा होता है ना, देखते हैं ना आबू में सब जब सूख जाता है पेड़ और पहली बारिश हो जाती है तो कैसे हरियाली हो जाती है 5-7 दिन के बाद ही। तो जैसे हमसे निकलने वाली खुशी की तरंगें सारे कल्प वृक्ष में हर आत्मा को खुशी दे रही हैं, हम खुश होंगे तो संसार खुशियों में नाचेगा, और हम गमों में होंगे तो अनेक की खुशियां नष्ट हो जाएंगी। हम अपने को ऐसा रेस्पॉन्सिबल समझें और खुश रहने का संकल्प करें। एक बहुत सुंदर बात जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं उनके लिए भी इंद्र प्रताप गीत भी बना सकते हो। भाई इंद्र प्रताप बहुत अच्छे गीत लिखता है। खुशी की कीमत बहुत बड़ी और उन बातों की कीमत जो हमारी खुशी छीनती हैं कितनी बड़ी। संदीप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 2-2 पैसे। हम समझ लें कि हमारी रोज की खुशी की कीमत 10 करोड़ रुपए। वैसे खुशी की कीमत होती नहीं, वो बाजार में नहीं मिलती है, पर मान लें हमारी खुशी की कीमत 10 करोड़ रुपए और जो बातें हमारे सामने आती हैं वो 1-1, 2-2 पैसे की। तो क्या 1-2 पैसे की बात से हम करोड़ों की संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं? नहीं। ये चिंतन करें। इसलिए जो भी बातें सामने आए, किसी ने कड़वे वचन बोल दिए, किसी ने उल्टा सुलटा कह दिया, किसी ने माताजी को कह दिया तुम कोई काम नहीं करती, इधर खाने पीने आई हो, क्यों आ गई तुम इधर, घर में काम नहीं था क्या, कुछ होती है तो क्या सोचेंगे, मुस्कुरा के पूरा कर दो। माताएं पावरफुल हो जाओ, आप सब मुस्कुरा के पूरा कर दो। कोई कहे घर में काम नहीं था क्या, क्या उत्तर दे दो, यही तो हमारा घर है। पावरफुल बनो, फीलिंग में नहीं। फीलिंग बाबा के शब्द हैं, फीलिंग माना आधी मृत्यु, हाल बिगड़ जाता है ना। फीलिंग नहीं, कुछ कह दो, अच्छा उत्तर दे दो, और ज्यादा ही गड़बड़ है तो पावरफुल उत्तर दे दो, समझते ना पावरफुल। लेकिन अपनी खुशी को खोना नहीं है, खुशी बहुत कीमती है, क्योंकि हमारी खुशी संसार को खुश करने वाली है, हमारी खुशी अनेकों का सहारा बन जाती है। ध्यान देंगे इस बात पर और चले आगे। क्या कहा बाबा ने, दर्शन सिंह जी बताएंगे। एक ही सरदार टोपी सहित चमक रहा है हमारी क्लास में, बोलो दर्शन जी, आपके दर्शन से तो भक्त प्रसन्न, बोलो आपको क्या अच्छा लगा। हाँ नहीं, मुझे एक और बात सुन गई, आपने तो बोला नहीं पर पता नहीं कैसे सुन गई, खजानों पर तुम्हारा अधिकार है। बहुत सुंदर बात मुझे लगी है, खुशी पर भी हमारा अधिकार है। अब आ जाए हम खुशी के बाद खजानों पर, सारी मुरली तो उस पर थी, खजानों पर, खजानों पर वहीं से शुरू किया बाबा ने। खजानों से संपन्न चेहरा, खुशनुमा चेहरा होगा ना, किसके पास धन भी बहुत हो, माताओं की पेटी ज्वेलरी से भरी हो, चेहरा अलग चमकेगा, भले ही गले में ना हो, केवल अटैची में बंद करके रखा हो, लेकिन खुशी बहुत रहेगी। और हाथों में अगर सोने की चूड़ी पहनी हो तो हाथ भी ऐसे करेंगी कई बार, ताकि लोग देख लें, देख तो ले मैंने क्या पहना हुआ है। खजानों के मालिक, खजानों पर हमारा अधिकार है, बहुत खजाने हैं हमारे पास। और कल बाबा ने एक विशेष खजाने पर ध्यान भी खिंचाया, कौन सा, संगम का समय। हम इस पर बहुत बार चर्चाएं कर भी चुके हैं, पर सचमुच जो मनुष्य समय को महत्व देता है उसका जीवन बहुत महान बन जाता है। समय देखो, अभी एग्जाम्स हुए, बच्चों ने समय को कितना महत्व दिया, सबके घरों में टीवी बंद थी। मैंने भी पूछा एक जगह, टीवी पे पर्दा पड़ा हुआ था, मुझे घरों में ले जाते हैं लोग जब मैं बाहर जाता हूँ, टीवी पे पर्दा रखा हुआ था। मैंने कहा क्या बात है भाई, टीवी को भी ढक दिया है, घूंघट में रख दिया है। कहा नहीं, बच्चों के एग्जाम है ना, समय को महत्व दिया जाता है ना, बच्चों को भी रुचि नहीं है कि टीवी देखें, क्योंकि महत्व दे रहे हैं पढ़ाई को। और हमारा समय कैसा है सोच ले, इस समय पर हम क्या क्या कर सकते हैं, जरा इसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लें। ये समय है जन्म जन्म की राजाई प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक दो पॉइंट सुनाता हूं, फिर आपको सुनाना है। ये समय है, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मैंने बाबा की मुरलियों से ही पाई ये बात। देखो भाई सब बैठे हैं, माताएं भी, अपने परिवार को चलाने के लिए, नौकरी करने में, काम धंधे करने में कितनी मेहनत, टेंशन, थकान है। मुझे बहने कन्याएं बताती हैं, सवेरे 9:30 बजे से ऑफिस शुरू होता है, रात के 9 बजे तक। मैंने पूछा कितना पैसा मिलता है, 30,000 मिलता है, ठीक है, किसी को 50,000 भी मिलता है, पर अपने लिए समय नहीं बचता, थकान हो जाती है, घर आते हैं तो सोने के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। सोच लो सभी, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, इतनी मेहनत यदि राजाई पाने के लिए कोई कर दे तो क्या हो जाए, राजाई परछाई की तरह पीछे पीछे चलने लगे। सोच ले, मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि अपने अपने परिवार को चलाने के लिए भाइयों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है नौकरियों में, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादियां करानी है, फिर उन्हें सेट भी करना है, और हमें 2 युग तक तो कमाना ही नहीं पड़ेगा। जस्ट विचार करो इस महान प्राप्ति पर, द्वापर युग में भी हमें धन के लिए मारामारी की जरूरत नहीं, सहज आता रहेगा, अथाह धन संपदा होगी द्वापर में भी। सब विचार करो, ऐसी प्राप्ति इस समय पर हो सकती है, हम क्या कर रहे हैं। और विचार करो, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनके लिए एक पॉइंट है, हमारा एक एक क्षण का योग प्रकृति को बदलने वाला है, सूरज चांद तारों ग्रहों को बदलने वाला है, संसार के वायुमंडल को बदलने वाला है। क्या हम समय को इतना महत्व देते हैं, ग्रहों की लोकेशन बदल जाएगी सतयुग में, जो स्थिति आज है वो नहीं होगी, कुछ और होगी। हो सकता है एवरी नाइट फुल मून हो, हर रात को चंद्रमा पूरा हो, पूर्णिमा हो, देवताओं के राज में अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि धरती जो अब 23.5 डिग्री एंगल पे है, कम हो गई 22.5 पे आ गई, वो सीधी हो जाएगी, सीधी का अर्थ है 180 डिग्री पर आ जाएगी। तो धरती के एंगल से घूमने से ही तो ये बद होता है ना, अमावस पूर्णिमा अंधेरा रोशनी शुक्ल और कृष्ण पक्ष, हो सकता है वहां ये सब न हो। अब मुझे पूरा मैं नहीं कह सकता श्योरली, पर मुझे ऐसा लगता है कि वहां रात को फुल मून चमकेगा, सवेरे सूरज उदय होगा तो चंद्रमा छुप जाएगा। तो ऐसा सुंदर समय हमारे हाथ में है, हम जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर सकते हैं, हम जन्म जन्म के लिए जैसा चाहे भाग्य बना सकते हैं, हम अपने अंदर ऐसे संस्कारों को भर सकते हैं कि हर जन्म हमारा सुखों में बीते। चिंतन करेंगे, थोड़ी गहरी बात हो गई। मान लो किसी ने संगम युग पर अपने को संतुष्ट कर लिया, हर जन्म में संतुष्ट रहेंगे, कलयुग के अंत तक भी संतुष्ट रहेंगे। किसी ने इस जन्म में अपने को बहुत सॉफ्ट बना दिया, निर्मल सरल चित्त, हर जन्म में सरल रहेंगे। ये महत्व है इस समय का, किसी ने इस समय अपना सब कुछ सफल कर दिया तो हर जन्म हर कदम हर पल सफलता दिखाई देगी, हर जीवन में जो कुछ भी करेंगे सफल। देखिए समय का ये महत्व है। और किसी को ख्याल आया कुछ क्या कर सकते हैं इस समय पर? हैं? हाँ एक्सचेंज तो कर ही रहे हैं, हाँ इनसे और कर सकते हैं सब कुछ। और बोलो भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं? भविष्य नहीं वर्तमान, भगवान का प्यार ले सकते हैं, प्रभु पालना का आनंद ले सकते हैं। वर्तमान के अनुभव भविष्य से भी बहुत श्रेष्ठ है। देखते हैं ना बाबा कैसे कैसे पालना करता है, आत्माओं को कैसे सुख देता है। मुरली तो कुछ थी नहीं ज्यादा, पर बाबा को देखने का सुख, उसके एक्सप्रेशंस, उसके वाइब्रेशंस का सुख, समझते हैं ना बाबा। बाप तो एक ही कह रहा था सब खजानों से संपन्न बच्चों को देख बाबा बहुत खुश हो रहे हैं, तो उसकी खुशी देखकर हमें क्या होता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं ना कि भगवान हमसे खुश है। तो क्या क्या हम संगम पर कर सकते हैं? अपने अंदर बहुत सारे टैलेंट्स यूज कर सकते हैं। एक सुख संवाद और बता दूं, मुझे याद आ गई अचानक, ध्यान से सुन लेंगे। संगम युग पर अपनी जो क्वालिटी हम ईश्वरीय सेवाओं में लगाएंगे, उस क्वालिटी के द्वापर युग से हम क्रिएटर संस्थापक बन जाएंगे। मान लो एक म्यूजिशियन है और उसने अपनी म्यूजिक की कला को ईश्वरीय सेवाओं में लगा दिया, पैसा कमाने के लिए नहीं। कोई लोग पैसा कमाने के लिए लगा रहे हैं, बिल्कुल समर्पित कर, समझते हैं ना मेरी बात, समर्पित कर दिया अपनी उस योग्यता को अपने टैलेंट्स को, तो यही आत्मा द्वापर से उस चीज को प्रारंभ करेगी। मान लो पेंटिंग है आर्ट, किसी ने अपने को समर्पित कर दिया उस कला को ईश्वरीय सेवाओं में, तो वो आत्माएं कला को आगे बढ़ाएंगी। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो संगम युग का समय बहुत बहुत सुंदर है, पहचाने इसको। किसने अपनी बुद्धि को सेवाओं में लगा दिया, क्या मिलेगा उसे जन्म जन्म? श्रेष्ठ बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि के अलावा एक शब्द और जोड़ दें, स्वच्छ बुद्धि, दिव्य बुद्धि, एक सुंदर शब्द और ईश्वरीय बुद्धि। मुझे बाबा का आजकल ये शब्द बहुत अच्छा लगता है मुरलियों में, जब बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय परिवार के हो, तो बाबा भी अपने परिवार में आता है ना साकार में। कभी कभी ऐसा होता था कोई बाहर का व्यक्ति आता था कि बाबा आपने ये क्यों बोला, तो बाबा कहते थे अरे मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, तुम्हारा क्या जाए इसमें। आज भी दादी जान की कह रही थी बहुत अच्छी बात, सवेरे मुरली सुनाने आई थी कि मैं बाबा के पास कभी कभी 6 बजे चली जाती थी सवेरे। वो समय बाबा किसी से मिलते नहीं थे, पर बहनों को ज्यादा होता है अट्रैक्शन तो चले गए, तो बाबा कहते थे बच्ची चलो मैं बाबा को लेकर आ रहा हूँ, समझ गए ना। फिर बाबा 6 बजे कमरे से निकलते थे, किचन से चक्कर लगाते हुए 6:10 पर हिस्ट्री हॉल में, और बस इसी बीच में बाबा आ जाते थे शिव बाबा, और 6:10 से 6:15 तक बाबा योग कराते थे, और 6:15 से 7:15 तक मुरली। बिल्कुल ये एक्यूरेट टाइम था, कोई घड़ी उससे ही मिला सकते थे अपनी कि बाबा क्लास में प्रवेश कर रहे हैं माना 6:10। तो देखो बाबा की पालना, संगम का महत्व, इस खजाने को हम खजाना समझें, इम्पोर्टेंट बात यह है। बहुत लोग समय को खजाना नहीं समझते, सालों बीत रहे हैं ना, रोज बीत रहा है, कोई खास बात थोड़ा ही, इसे खजाना समझते नहीं। खजाना माना पैसा, खजाना माना सोना, खजाना माना हीरे, नहीं, समय भी बहुत बड़ा खजाना है, वो तो है ही, पर समय खजाना है। जैसे विद्यार्थियों के लिए एग्जाम का समय कितना बड़ा खजाना होता है, हम सबके लिए संगम बहुत बड़ा खजाना है। इसे खजाना समझकर इसकी सुरक्षा करें, इसको बचाएं, इसको यूज करें। कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता हो मेहनत से, तो वो 10,000 को यूज कैसे करेगा, जानते हैं ना। अगर वो बाजार में सब्जी लेने गया है और सब्जी वाला कह रहा है 10 रुपए किलो है, तो वो इतना जरूर करेगा, 10.25 तो कर दो, उसे इतने थोड़े पैसे का भी महत्व होगा ना, होगा या नहीं, क्योंकि वो मेहनत से 10,000 ही कमाता है। हमारे पास समय बहुत मूल्यवान है, सभी चेक करें हमारा ये सुंदर समय कैसे बीत रहा है। इससे भी अच्छा, हम इस सुंदर समय को कैसे बिता रहे हैं। संकल्पों का खजाना भी दूसरा खजाना है। हम 9 खजानों की लिस्ट निकालेंगे। बाबा ने तो 3 बताए, ज्ञान योग और धारणा। इन तीनों को 9 में बदल दें, हम लिस्ट बना लें और आप इस पे स्वयं चिंतन करना। अभी मैं इस पे क्लास नहीं कराऊंगा, इसकी क्लास हम आज मधुबन में कराएंगे। पहला खजाना ज्ञान का खजाना, दूसरा खजाना नहीं, अब योग नहीं, अब वो 9 निकालेंगे। योग से खजाने मिलते हैं, बाबा ने आधार बताया, धारणाओं में बहुत चीजें हैं। दूसरा खजाना गुणों का खजाना, लिखते जाओ, जिन्हें क्लास भी करानी है वो इन पे क्लास कराया करना, कहीं भी गीता पाठशालाओं में, सेंटरों में। तीसरा खजाना शक्तियों का खजाना, चौथा संकल्पों का खजाना, पांचवा समय का खजाना, छठा खुशी का खजाना, भूलो नहीं, खुशी का खजाना, सातवा दुआओं का खजाना, आठवा पुण्य कर्मों का खजाना, नौवा सबसे बड़ा पवित्रता का खजाना, उसमें सुख शांति आ गई। योग में शक्तियां भी आ गई, योग में बहुत चीजें आ जाती हैं, धारणाओं में कई आ गई। हर खजाने का बहुत बड़ा महत्व है। संकल्पों का खजाना आ गया ना, ये भी संकल्पों का खजाना। देखिए, जिसके पास जितने महान संकल्प, वो व्यक्ति उतना ही महान। संकल्प एक संकल्प ही तो है जो किसी को उदास कर रहा है तो किसी को आनंद में नचा रहा है, किसी को निराशा के अंधकार में डुबो रहा है तो किसी को उमंग उत्साह में, कोई परेशान हो रहा है तो कोई प्रभु के गुणगान कर रहा है, किसी का देवाला हो गया, बहुत पहले की घटना है, करोड़पति व्यक्ति अफ्रीका का, ज्ञान में आया ही था 6 मास, देवाला हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस था वर्ल्ड में उसका, 47 कंट्रीज में। उसका एक फ्रेंड उससे मिलने आया, बातचीत की, सांत्वना दी, कहा हम आपको मदद करेंगे, कोई बात नहीं, फिर कहा आप तो कहते थे मुझे भगवान मिल गया, ये क्या हो गया आपके साथ, भगवान ने देवाला भी नहीं रोका आपका। ये घूमता रहा उसके साथ और उत्तर दिया, देखिए ये संकल्पी है ना, उसने कहा कि यदि बाबा ना मिलता तो मैं आपको यहां घूमते हुए थोड़ा ही मिलता, अब मेरा हार्ट अटैक होके मैं ऊपर चला गया होता। फिर उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया, ये भी संकल्प है, देख लो संकल्प कितना बड़ा खजाना है। उसने कहा जब मैं अफ्रीका में आया था मैं एक अटैची लेकर आया था, केवल मैंने 25-30 सालों में इतना बड़ा कारोबार फैलाया था, तो कारोबार बनाने वाला कौन, मैं, और मैं जिंदा हूं तो फिर बना दूंगा ना, पैसा ही तो गया, मैं तो हूं, क्रिएटर तो है, ये संकल्प है ना। केवल वो परेशान भी हो सकता, हाय मेरा सब चला गया बाबा तुमने क्या कर दिया, नुकसान खुद किया और दोष बाबा का तुमने क्या कर दिया। ये तुम तो कहते थे प्यारे बाबा कहोगे मेरा बाबा मैं आ जाऊंगा, तुम तो आए ही नहीं। संकल्प ही मनुष्य को परेशान करते हैं, संशय में लाते हैं, बिल्कुल मार डालते हैं, और संकल्प ही उसको एनर्जेटिक कर देते हैं, फिर से नई उमंग उत्साह भर देते हैं। ठीक है सब कुछ चला गया ना, फिर बनाएंगे, था कहां हमारे पास, संकल्प है ना। तो हम श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को भरें। मुझे कई माताएं मिली, एक माता अभी आगे सरोवर में आई घूमने, उसका बच्चा कहीं खो गया। अब उसके पार्टी वाले कह रहे थे ढूंढो ना, तुम तो कुछ भी नहीं सोच रही। उसने कहा बाबा बैठा है ना ले आएगा। दूसरी माता कमरे में अभी मेरे से मिलने आई, कहा मेरा बच्चा बीमार हो गया था, मैं उसे छोड़ के आई थी, आज फोन आया उसकी ये बीमारी और बढ़ गई है। मैंने बाबा को कहा बाबा तुम खुदा दोस्त हो जरा संभाल लेना, और मुझे विश्वास है वो संभालेगा। ये क्या है संकल्प। वो दुखी भी हो सकती थी कि पति डांटेगा, देखा बच्चे को छोड़ के चली गई, अब मेरा क्या होगा, घर में कैसे जाऊंगी, वो सारा प्रभु मिलन का सुख नशा नष्ट कर सकती थी। अभी अभी की बात है 6:30 बजे, लेकिन मुझे बता रही थी, मैंने बाबा को कह दिया आप तो सुप्रीम सर्जन हो ना, जाओ ठीक कर दो, और मुझे विश्वास है बाबा ठीक कर देगा। तो संकल्पों के खजाने से स्वयं को भरपूर करें। और संकल्पों के खजाने के लिए कौन सा खजाना चाहिए, पहला ज्ञान का। तो सभी इस बात पे बहुत ध्यान दें, अपने अंदर ज्ञान का खजाना बढ़ाते चलें। इसी से खुशी का खजाना बढ़ेगा, इसी से संकल्पों का खजाना बढ़ेगा, अनेक धारणाओं पे हमारा ध्यान जाएगा। इससे हम ज्ञान को ही भूल जाते हैं ना, कोई समस्या आती है, कोई बात आती है तो हम ज्ञान को विस्मृत कर देते हैं ना, तो हर बात अपना प्रभाव हम पे डाल लेती है। तो ज्ञान का खजाना बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, मुरलियों का अध्ययन। सभी बहने माताएं भी ध्यान दें, जरूर नहीं आपको मुरली मिल जाए, जैसे कल की बाबा की ये मुरली है, इसके आप 5-7 पॉइंट लिख कर रखो। देखो अच्छा तरीका पुरुषार्थ का ये है, जो बात आपको बहुत प्रिय लगे वो लिख लो, मुझे बहुत प्रिय लगी बाबा कह रहा, बाप को राजी करो ना, हालांकि बात कुछ नहीं है लेकिन आत्मा को जागृत करने वाली बात है ना, ऐसी 5-7 पॉइंट लिख लो और रोज पढ़ते रहा करो। हर मुरली से ऐसे कर लो, हर मुरली की 5 पॉइंट लिख लो, 10 मुरली चली होंगी ना, कितनी चली इस बार 8 9 मुरलियों की 5-5 पॉइंट लिख लो, बहुत सारी कॉमन है, संतुष्टता की, बेफिक्र बादशाह की, खुश रहने की कॉमन बातें हैं, आपको मुश्किल से 15-20 पॉइंट मिलेंगी सारी मुरलियों से। उनको लिखो, उन पे चिंतन करो, उनको पढ़ते रहो, पढ़ते रहेंगे तो चिंतन चलेगा। तो ज्ञान का खजाना बढ़ाएंगे तो समय का खजाना भी सफल होगा। फिर से सोच लें, हम अपने संगम के समय के खजाने को पर चिंतन में बिता रहे हैं, पर दर्शन में बिता रहे हैं, या ईश्वरीय आनंदों में बिता रहे हैं, स्व उन्नति में बिता रहे हैं, या परेशानियों में बिता रहे हैं, हम कहीं उलझ तो नहीं गए हैं। ये चक्रव्यूह भी है माया का, जो इसमें एक बार प्रवेश कर ले फिर निकलता नहीं, ये भी ध्यान देना है। तो ज्ञान का खजाना सभी बढ़ाते चलें। आज सवेरे की मुरली बहुत अच्छी थी, कई पॉइंट्स थे उसमें बहुत सुंदर, जो हमें जगाती हैं। वरदान में तो बहुत सुंदर था, सेवा कैसे वृद्धि को पाती है, उसका उत्तर था। तो क्या करेंगे सभी? बोलो सार, सदा खुश रहेंगे। है ये अपने हाथ में या नहीं? और दूसरी बात भी, खुश रहेंगे और इसको दूसरे शब्दों में ले लें बाबा के ही, खुद भी राजी रहेंगे और दूसरों को भी राजी करेंगे। ये प्रॉपर वर्ड है इसके लिए, राजी करना, अपनी सेवाओं से सबको राजी करना, अपने व्यवहार से सबको राजी करना, इम्पोर्टेंट बात, अपने बोल से सबको राजी करना। कई लोग ऐसे हैं सब कुछ अच्छा करते हैं पर बोल के फिर उस पे पानी फेर देते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, बच्चा 2 साल में बोलना सीख जाता है। 2 साल लगते हैं मुझे पता नहीं, माताएं बताएंगी। बच्चा 2 साल में बोलना सीख जाता है पर क्या बोलना है कई लोग पूरा जीवन में नहीं सीख पाते, ठीक है ना? क्या बोलना है और कैसे बोलना है कई लोगों को समझ में नहीं आता, उन्हें तो बोलना है बस, जो बोलना है और वो अपने को राइट समझते हैं। तो हम खुद भी राजी रहेंगे और दूसरों को भी राजी करेंगे। खुशी पर मेरा अधिकार है, खजानों पर हमारा अधिकार है, इसको जब जरा अपने गहन चिंतन में ले आए। और इस खुशी का इफेक्ट तो हमारे बॉडी पर भी बहुत गहरा आता है। हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, वो नीचे हार्ट पेशेंट्स को पूरे चित्र बनाकर समझाते हैं कि जब मनुष्य खुश रहता है, अब डॉक्टर जानेंगे, मैं तो वो लैंग्वेज नहीं जानता, कि सेल्स, सेल्स के अंदर जीन्स, जीन्स के अंदर भी कुछ वो बताते हैं, उनमें परिवर्तन होता है और कैसे मनुष्य हेल्दी हो जाता है। तो हम ये भी संकल्प रख लें, खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मुस्कुराओ, आगे बढ़ जाओ। कोई गाली दे, मुस्कुरा के दृष्टि देके आगे निकल जाओ। जरूरी नहीं रिएक्शन करें ही, क्यों दी इसने गाली, हमें क्या समझता है, ठीक करेंगे अब इसको, रोज गाली देता है, हम इसे ठीक नहीं करेंगे तो इसका गाली देना बढ़ता ही जाएगा, ठीक करना है इसको हमें, गुस्सा भी आ जाए, नहीं इसकी जरूरत नहीं, सबको ठीक करने वाला बैठा है ना, करेगा आप ही। हमें तो अपने को ठीक करने का अधिकार है, दूसरों को ठीक बाबा करेगा, समय करेगा। बहुत हल्के हो जाएं और सबको राजी करना भी अपना लक्ष्य बना लें। पसंद है? माताएं अपने बच्चों को राजी कर सकती हैं? सोच के बताना जरा। कई माताएं आ गई मेरे पास कल और आज में ही, हमारे बच्चे खुश ही नहीं होते, लड़ाई करते, और बच्चे बड़े नहीं, कोई 9th में पढ़ता है, कोई 7th में पढ़ता है, उन बच्चों से माताएं दुखी, मेरी सुनते ही नहीं। माताओं की समस्या, क्या करेंगे अगर आपके बच्चे आपकी सुने, इसके लिए क्या करेंगी माताएं? आपके बच्चे आपकी सुने, कैसे सुनेंगे? माताएं उत्तर दें, सुभावना। हम जितना भगवान की सुनेंगे हमारे बच्चे उतनी ही हमारी सुनेंगे। माताएं परेशान होती हैं बच्चे नहीं सुनते, और बाबा की बात हम सब कभी नहीं सुनते, वो परेशान होता है। सीख लो बाबा से और हल्के हो जाओ। ओम शांति। संकल्प के साथ योग करेंगे, मुझे बहुत खुश रहना है और अपनी इस कमी को छोड़ देना है।
का यही कथन है। की तरह।